पृष्ठ संख्या 132। जब वह कहते हैं कि कथ्य जो भी है वह किसी अकेले व्यक्ति का नहीं, हमारे समय का है, और वह है एक आकुलता, निरंतर बढ़ती हुई आकुलता। आकुलता में एक गहरा असंतोष भी है और विद्रोह भी। हालांकि शब्दों की सीमाएं उसे बांधने में असमर्थ हैं, लगता है कि अधिक शब्दों में घेर कर उसे अधिक सीमित ही किया जा सकता है। राकेश की व्यक्तिगत डायरी के पृष्ठों में यह आकुलता भरी पड़ी है। जो महसूस हो रहा है उसे व्यक्त करने के लिए शब्द कहाँ हैं? शब्द की निरर्थकता, जो महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए नहीं कि साहस नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उसके लिए ठीक शब्द नहीं मिल पाएंगे। पार्श्व नाटक छतरियां मानो इसी आकुलता का परिणाम है, जो मंच पर भाषा को मौन कर देता है और नेपथ्य से आने वाली ध्वनियों, प्रतिध्वनियों, विभिन्न शब्दों, आवाजों के द्वारा ही सब कुछ कहता है। छतरियां आने वाली जिंदगी में कितनी अप्रत्याशित स्थितियों की कामना करने की प्रवृत्ति की छटपटाहट का फल है। अभिव्यक्ति का कोई माध्यम हो यह कितनी जरूरी है। अंदर उफनते लावे को रास्ता देने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन प्रवृत्ति छुटकारा पाने वाली नहीं, सतही कोशिश नहीं। आज की परिस्थितियों दबाव में घुटते जाते आदमी की स्थिति शब्दों में नहीं समा पाती। ध्वनियाँ, विभिन्न ध्वनियाँ ही शायद उसे स्पष्ट या अभिव्यक्त कर सकें। भाषा नहीं, शब्द नहीं, भाव नहीं, कुछ भी नहीं। भाव के निःशेष हो जाने पर भाषा या शब्द की भी मौत हो जाती है। अनुभूति से अलग जड़ शब्द राकेश के नाटकों में नहीं मिलेंगे। कहा जा सकता है कि बीज नाटकों और इस पार्श्व नाटक में राकेश कुछ एब्सर्ड नाट्य परंपरा के निकट आ रहे थे, लेकिन किसी बाह्य प्रभाव और आंदोलन के रूप में इन रचनाओं को देखना गलत होगा, क्योंकि निश्चित रूप में वह राकेश के स्वभाव में नहीं रहा है। आषाढ़ का एक दिन से छतरियां तक की नाटक यात्रा राकेश की भाषा यात्रा ही है, जिसमें निरंतर बढ़ते रहने, रास्ता बदलने, नई दिशा खोजने की आतुरता, साहस और प्रबल इच्छा शक्ति दिखाई देती है। पैर तले की जमीन के अनुवर्तन, एक की भाषा संरचना और नाट्य भाषा की हरकत, धड़कन, उतार चढ़ाव को देखकर भी यह लगता है कि राकेश भाषा के प्राप्त तत्व से गहरे जुड़ गए थे। उसमें जहाँ संकेत भरे थे वहीं अभिनय तत्व भी। यहाँ कुछ और टूटा है क्या? टेलीफोन बिल्कुल बेजान है, मेरा ख्याल है इसकी लाइन कट गई है। वह अपना खोल बनाए रखना चाहता है। उसका शायद ख्याल है कि उसका खोल किसी को नजर नहीं आएगा, पर किसका खोल किसे नजर नहीं आता? सब एक दूसरे के खोल से वाकिफ हैं, एक दूसरे की खोल उतरते देखना चाहते हैं, मगर अपना खोल बनाए रखते हुए। संदर्भ 1, परिवेश, पृष्ठ संख्या 194, 2, सारिका, अगस्त 1974, पृष्ठ संख्या 67। पृष्ठ संख्या 133। फिर वही उतरती हुई रात और वही आवाजें, झिंगुरों, झिल्लियों और मेंढकों की, वही एक आदम सी दहशत, वही अकेलापन और वही अपने आप से सामना करना। ध्यान से जाना, उधर कांच के टुकड़े बिखरे हैं। मेरे लिए वह एक कब्रिस्तान बन गई है। औरत कब्रिस्तान क्यों बन जाती है? इस प्रकार के प्रतीकात्मक लाक्षणिक संकेत और व्यंजनात्मकता इस नाटक में भरी पड़ी है, और यहाँ कुछ भी विलष्ट नहीं है। क्योंकि ये आम जीवन के अनुभव और प्रयोगों से जुड़ी हैं और नाटक की दहशत भरी लय से भी। विशेष बात यह भी है कि राकेश भाषा और संवाद के गहरे रिश्ते से ही नाटकीयता की सृष्टि करते हैं, बाहरी उपकरणों से नहीं। नाटक की भाषा की यही मौलिकता होती है, उसकी उच्चरित ध्वनित स्वरूप और उसकी लय। भाषा की यह पकड़ न होती तो इस नाटक को एक रस होने में देर न लगती, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की परिस्थिति में जैसे पात्रों की नियति है, उनके अपने अपने उद्गार हैं, प्रतिक्रियाएं हैं और संबंध बनाने की निरर्थक कोशिश है। अंधेरा, टेलीफोन सब इसमें सहयोग देने लगते हैं। प्रत्येक वस्तु और स्थिति को नाटक की अभिव्यक्ति का अनिवार्य अंग बना लेना ही नाटककार का कौशल है। नाटकीय शब्द की खोज में लगा हुआ यह नाटककार अभी स्वभावतः नाट्य भाषा के और भी कितने नए आयाम प्रस्तुत करता। भाषा के संबंध में राकेश का अपना चिंतन है। हिंदी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति और शब्द सामर्थ्य उसकी सीमाओं और विशेषताओं से वह परिचित ही नहीं थे। रचनाकार की दृष्टि से उन्होंने उस पर सोचा विचारा भी है और उनके इधर के सभी नाट्यों में देशी विदेशी शब्द, उर्दू, अंग्रेजी और बोलचाल के शब्द बहुत आए हैं। इसे वह किसी भी भाषा के लिए अनिवार्य मानते हुए हिंदी की अर्थ शक्ति के विस्तार की संभावनाओं के प्रति आश्वस्त हैं। उसे बेचारी हिंदी के रूप में लेकर उनका विचार है कि हिंदी एक ऐसी संघर्षशील भाषा अवश्य है जो अपनी भाव विचार और बिंब संपत्ति के संप्रेषण की समस्या से निरंतर जूझ रही है। हर जीवित भाषा एक संक्रमण की स्थिति में रहती है, उसके जीवित होने के प्रमाण ही यह है। आज की भाषा का आंतरिक रूप परिवर्तन उनके ह्रास का नहीं बल्कि विकास की संभावनाओं का ही संकेत है। आज के रचनाकार की अपेक्षाएं यदि उसे भाषा के नए रूप विधान की ओर प्रेरित करती है तो उसके प्रयोगों को आशंका और अविश्वास की दृष्टि से देखना उसके साथ न्याय करना नहीं है। कहना न होगा कि रचना की अवचेतन प्रक्रिया में संदर्भ की अपेक्षा जिस विशेष शब्द से पूरी हुई है, ऐसा शब्द जिसे रचनाकार और पाठक ब्रैकेट में दर्शक दोनों परिचित हैं, संदर्भ एक, परिवेश पृष्ठ संख्या 195। पृष्ठ संख्या 134 ब्रैकेट में नाटक के लिए यह समान परिचय और भी आवश्यक है, ब्रैकेट क्लोज, और वाक्य की लय में जो शब्द अनायास रूप से प्रयुक्त हुआ है, भाषा के उसी स्वाभाविक ताने बाने को सुरक्षित रखने की चेष्टा उनके नाटकों में है। एक रचनाकार का भाषा के प्रति यही रुख, यही दायित्व होना चाहिए। उनमें समकालीन संवेदना की सूक्ष्म पकड़ और नाटक की सही भाषा की तलाश हिंदी नाटक को एकदम बहुत आगे ले जाती है। न शाब्दिक खिलवाड़, न सूक्ति वचन प्रवृत्ति, न अनर्गल भावावेश, नाटक की भाषा और नाटक की संरचना में बनावटीपन नहीं है, बल्कि वह नाटककार के अंतर जगत, उसकी अवधारणाओं को उजागर करने वाली नाट्य भाषा और नाटक के संबंध में नई समझ पैदा करने वाली है। विषय और भाषा के बीच नाट्य सुलभ संगति मिलती है। यह राकेश की अकुंठित भाषा संवेदना का उदाहरण है। विषय के अनुरूप भाषा को बदलने की काव्यात्मक ईमानदारी, जैसे रघुवीर सहाय की कविताओं में कविता की आंतरिक बनावट की मांग कही जाएगी, उसी तरह राकेश के नाटकों में भाषागत यह अंतर उसकी सृजनात्मक ईमानदारी का ही प्रमाण है। यह पहली बार हुआ होगा कि अभिनेता, निर्देशक, रंगकर्मी इस कदर गहराई से किसी नाटक या नाटककार के बारे में महसूस कर रहे हों, सोच विचार कर रहे हों। ओम शिवपुरी एक अभिनेता के रूप में राकेश की नाट्य भाषा के संबंध में अपने विचार यूं प्रकट करते हैं। उस आदमी ने सेंस कर लिया था कि आज की टोटल रिदम को किस शब्दावली में व्यक्त किया जा सकता है। उनके नाटकों का एक भी शब्द बनावटी नहीं है। यह बात उनके तीनों नाटकों को साथ रख कर देखिए कि वह इंसान किस कदर भाषा की तलाश कर रहा है। संदर्भ एक, सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ संख्या 33।